समय सार अनुशीलन प्रश्न नंबर 248 91 मा कलश 91 इंद्रजाल मिदम एव उच्छलत पुष्कलो उच्चक विकल्प बीच भी यस्य स्फुरणम एव तत्क्षणम कृतस्नमस्यति तदस्मि चिन्महा। इंद्रजाल से स्फुरण भगवान आत्मा चैतन्य का पुंज है। पुंज समझते समूह को बोलते हैं, मैं चैतन्य का पिंड हूं और वो ऐसी सामर्थ्य वाला है कि ये जो नयों के विकल्प हैं ये इंद्रजाल जैसे स्फुरायमान होते हैं, अनंत हैं, कोई का कोई ठिकाना नहीं है। और इन अनंतों को नाश करने के लिए ना तो किसी पर की आवश्यकता है, ना किसी वृतुब्बासा जी की आवश्यकता है, पर एक भगवान आत्मा पर एक क्षण अपने ज्ञान का गेय बनाओ तो सारे विकल्प के पुंज एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। इतना सरल और सहज मार्ग जगत में कहीं नहीं हो सकता। सब तो एक क्षण में काम हो सकता है। एक दोहा आता है कि अनादि काल का ये संसार है, इसको नष्ट करने के लिए जितना काल का है ये उतना समय लगने वाला नहीं है, है ना? जिन बिल्डिंगों को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, देशों को बनाने में एक क्षण में एक बम गिरता है तो सब साफ हो जाते हैं, उसके विनाश करने में उतना नहीं है, है ना? उतना समय नहीं लगता है, है? एक समय में तत्क्षण विलाय, अनंत काल की अशुद्धता आत्म का अनुभव करते समय एक क्षण में समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके आश्रय से ये काम होता है वो मैं ही हूं, और जिसे आश्रय लेना है वो भी मैं ही हूं। माने रंत मात्र भी पराधीनता इसमें नहीं है। अब तुम अपनी दृष्टि को दौड़ाओ एक तरफ ये भगवान आत्मा और उसका एक समय का दर्शन जो किसी पर के सहयोग से नहीं होगा, स्वयं से ही होगा, और दूसरी तरफ सारा अनंतानंद जगत, उसे जाने दो जो ये हमारे मोक्ष के मार्ग के नाम के पुरुषार्थ है ना, इतने उपवास व्रत शील संयम एक वर्ष तक खड़े रहे, तपस्या के हमें बहुत बड़े रूप दिखाई देते हैं ना, इन सब तपों में सर्वश्रेष्ठ तप ध्यान है, और वो भी आत्म ध्यान, और वो एक क्षण से ये काम होता है। और बाकी के जो ध्यान नाम के तप से 11 तप हैं, तो इसमें अनंत काल तक करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है, क्या कीमत है उनकी। ध्यान की कितनी महिमा है, हमारे चित्त में भी ध्यान की इतनी महिमा है और उतने हम गीत गाते हैं, फिर भी ये जगत ऐसा है कि हम ध्यान के विरोधी हैं, ये आरोप लगाता है। समझे ना? आप कहोगे तो आज कहने लग गए, आरोप लगाने लग गए, लेकिन इसमें हमने जो लिखा है वो तो आज नहीं लिखा ना, वो तो 20-25-25-30-30 साल पहले लिखा हुआ है ना। विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को जिसका स्मरण मात्र ही क्षण तत्क्षण बढ़ा देता है, वह तन्मात्र तेज पुंज मैं हूं। तो ये बात मतलब आती ना। अब दिक्कत तो ये है कि जिसे तुम ध्यान मानकर एक नए क्रियाकांड में उलझ गए हो, जो ये पुराना क्रियाकांड था ये तो शास्त्र सम्मत था कम से कम। क्या क्या शास्त्र सम्मत था? कि दिन में भगवान की पूजा, ये सब चीजें शास्त्र में लिखी कि नहीं लिखी? पांच अनुवेद, पांच महावेद, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण, ये मतलब ये सब शास्त्र सम्मत था ना क्या? शास्त्र सम्मत सामायिक प्रतिमा सामायिक वृत्त है ना, और दो घड़ी तीन घड़ी सामायिक करना, वो सब सार शास्त्र सम्मत बातें थी ना। तो उस शास्त्र सम्मत बातों को तो तुम उड़ा रहे हो, पर अपने मन की कल्पना से जिसका कहीं कोई आधार नहीं है शास्त्र में, उससे तुम कुछ क्रिया करने लग गए हो और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया है, पर अपने को उस पार्टी का मान लिया है क्या है? और सबको उस पार्टी के विरोधी हो तुम, एक वचन कर दिया है। यानी इस जगत में कितनी विचित्र स्थिति है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं है? हमारे ध्यान की लिखी किताब यूनिवर्सिटी के कोर्स में लगी, यूनिवर्सिटी मान रही है कि ध्यान के लिए ऑथेंटिक किताब है, और वो सब कह रहे कि नहीं मेरे ध्यान ही नहीं, ध्यान को मानते ही नहीं, ध्यान में किताब लिखी, इतने व्याख्यान किए, पर अभी जो और करेंगे उनको तो ध्यान पर जैसा ध्यान भी कहते हैं वैसा ध्यान करना है। मेरे एक बहुत निर्दिष्ट हैं तो वो विपस्सना में भी होकर आए हैं, उनकी वो बौद्धों की चलती ना गोयन का की, और ये अपने परीक्षा ध्यान में भी होके आए हैं और प्रैक्टिस उसी की करते हैं, और अपन को भी समय समय पर उपदेश देते हैं कि वो अपन को भी यहां शुरू करना चाहिए, और आप चाहें तो वे भी उसमें सहयोग दे सकते हैं, मैं वो कराने का काम वो सिखा सकते हैं, आप समझे ना आपके। और जब इस बात को अपन नहीं मानते हैं तो उसको कहते हैं कि आप एक ध्यान पे एक किताब लिखो, इतना आग्रह करते हैं, इतना आग्रह करते हैं कि खाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ये बहुत गहराई से जानता हूं कि इन्हें क्या लिखाना है, क्योंकि इनके दिमाग में ये गहराई से बैठा हुआ है कि ध्यान तो असलियत में वो ही है जो ये मान रहे हैं, पर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि अपन किताब लिखेंगे तो वो सब बातें उसमें आ जाएंगी। ये सही घटना बता रहा हूं मैं आपको बिना नाम लिए, और जब किताब लिखी क्या तो सबसे पहले विरोध का झंडा उन्होंने थाम लिया, क्यों तुम ध्यान की किताब ध्यान चाहते थे ना, तो तुम क्या चाहते थे कि मैं गोयन का वाला ध्यान की बात किताब लिखूंगा? वो तो बौद्धों का नहीं, नहीं आपको ज्यादा पता नहीं है, वो बौद्धों ने भी जैनियों से लिया है। अच्छा, वो भी लिया है, और वो जो योग मत है ना उनने भी अपने जैनियों से ही लिया है, अपने में है सब सब जगह है। प्योर देह की क्रिया समझे है, उसमें धर्म नाम का स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि देह के पोषण की देह को शुद्ध रखने की क्रिया वो तो स्पष्ट अशुभ भाव है क्या, यहां शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है, क्या है ना। शास्त्र का भी स्वाध्याय करते हैं तो इसी एंगल से करते हैं कि उनके पक्ष की बात कहीं मिल जाए तो फटाफट वो उसको ये लिखे, सदृश संग्रह में भी लिखा है, दिल फलाने जगह भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये लिखा है कि ध्यान करना चाहिए, पहले ध्यान के बिना मुक्ति नहीं हो, तो ये कहां मतभेद है, ये कौन ये प्रमाण क्यों ला रहे हो, ये कौन कह रहा है क्यों, ये तो हम भी कह रहे हैं कि 1000 वर्ष का एक वर्ष का उपवास आदिनाथ का काम नहीं आया और अंतर मुहूर्त का ध्यान काम आ गया। ये हजारों बार अपन ने कहा कि नहीं कहा बोलिए, तो ध्यान की महिमा नहीं है, ध्यान के महिमा वाचक छंद निकाल निकाल के ऐसा लगता है कि उनने ये हमारे गाल पे तमाचा धर दिया है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। ये तो तब हो गया, हमने ध्यान की महिमा हम स्वीकार नहीं करते हो क्या? जैसे आजकल चल गया है ना, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पुरुषों के साथ होना चाहिए। ये कौन कह रहा है महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए? ये किससे कह रहे हो तुम? सवाल तो कोई पर्टिकुलर केस की बात है ना। अब उस केस को तो गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि वो महिला पुरुष के प्रति अन्याय कर रही है कि पुरुष भी महिलाओं के प्रति अन्याय कर रहे हैं। क्यों? एक कॉमन शब्द है, जब पर्टिकुलर बात करने लगते हैं तो उदाहरण कॉमन के देते हैं, उदाहरण कॉमन के देते हैं। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता हूं उसमें। इस कलश में यह कहा गया है कि मैं तो वह चैतन्य का पुंज चिन्मात्र ज्योति भगवान आत्मा हूं, जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर समस्त विकल्पों का समन हो जाता है, नयों का इंद्रजाल बिलायमान हो जाता है। अब कहते ज्ञान में स्फुराय होने पर वो तो ज्ञान का गे बना वस्त्र और कुछ नहीं, और सारे विकल्प के पुंज जब रुई में आग लग जाती है ना, ऐसा तात्पर्य है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है। पता एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य है। एकमात्र श्रद्धे ध्येय और परम गे निज भगवान आत्मा ही है। कितना स्पष्ट शब्दों में है। अब इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। भाई अभ्यास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्षण भी ध्यान नाम की पर्याय से भगवान आत्मा खाली नहीं है। श्रेयोपम ज्ञान में तो ये विशेषता कहो या डिफेक्ट कहो है कि एक समय यदि कोई पदार्थ ज्ञान का गेय बने तो वो उसके ज्ञान के जानने में आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अवग्रह बन के रह जाएगा ना। पहले दर्शन होगा और फिर दूसरे समय श्रेयोपम ज्ञान वाले के अवग्रह होगा, फिर ईहा अवाय धारणा इन सबके लिए स्मृति प्रतिविज्ञान इन सबके लिए एक ही पदार्थ पर बहुत समय तक उपयोग का रहना अनिवार्य है। तो श्रेयोपम ज्ञान में तो बहुत समय तक रहता ही है, आप समझे ना। जितना जो ज्ञान आपको हो रहा है, ये मैंने देखो पढ़ा, मैं ज्ञायक हूं, तो इसमें भी असंख्य समय लग गए। इतना इतने काल तक मेरा उपयोग इस पर केंद्रित रहा, ये केंद्रित रखने की समस्या कहां है? ये पागलों का और ज्यादा केंद्रित हो जाता है, फिर एक ही है ऐसे देखते रहते हैं। अब हम चिल्लाते रहो, आवाज देते रहो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं। एक जगह उनका उपयोग केंद्रित तो होता ही है, कहां है ये समस्या? कहां है कि उपयोग केंद्रित करने की है? असली बात तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर केंद्रित करने की बात है। तो वो एक समय पहले ज्ञान का गेय बने तब तो केंद्रित हो, और ज्ञान का गेय बनने का जो मार्ग है उसकी तो तुम बात ही नहीं करते। तुम तो रीढ़ की हड्डी की प्रैक्टिस करते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर। ये हमारे इन लोगों ने इतनी सीधी रखवाई पहले के, आप 50 साल पहले के बुढ़े लोगों को देखना जाके अपने गांव में जाकर के, तो सब ऐसे होंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी उनकी ऐसी हो रही होगी। अब अभी शहर के लोग हो गए ना, अपन लोग अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। क्यों? क्योंकि इतने इतना पढ़ाया कि तुम झुक के बैठोगे तो तुम बुढ़ापे में बहुत तकलीफ पाओगे, गद्दी सीधी हो जाएगी। तो हमने ऐसा आकर के बैठना सीख लिया। अब कोई आदमी, कोई बुढ़े आदमी को देखो, है पुराने छोड़ दो, अभी जो नए पढ़े लिखे बुढ़ों को देखो एकदम ऐसे है, तो ऐसा नहीं समझना कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी टेढ़ी हो गई है, सच बोलता हूं। जो हमने ध्यान की क्लास लगाई थी ना सर शांति जी, आप थे उसमें, करी बड़ी ज्यादा थे, तो वो ये कहते थे कि अब समस्या ये नहीं है कि ऐसी ऐसी ना हो जाए, अब तो ये है कि ऐसी ना हो जाए, क्योंकि पेट में तोन निकलती है ना, तो उसके बदन से पिछला हिस्सा जो रीढ़ का होता है उसमें ऐसा मोड़ आ जाता है, अब ऐसा नहीं आता। वो दुबले पतलों को ऐसा आता है, और जो ये मोटे ताजे लोग हैं उनको ऐसा मोड़ आता है, सीधी का है वो यही सिखाते थे कि ये सीधी रहे, इसलिए आपको फलाना आसन करना है, फलाना आसन करना है, फिर पैर लगा कर ऐसे झुकाना है, ये झुकाना है, ये करना है, ये करना है, आसन है ना। मैंने इतना उपदेश दे दिया उसका क्या कि वो सीधी तो रही नहीं पाई, पीछे को टेढ़ी हो गई। ध्यान जिसकी प्रैक्टिस कह रहे हो उसकी प्रैक्टिस की कहां जरूरत है, पर तुम पर पे ही प्रैक्टिस करा रहे ना, तो पर पे तो है ही, तो वहां से हटाने की प्रैक्टिस कराना है क्या, देह से हटाने की प्रैक्टिस कराना है। देह के तो किसी ना किसी अंग पे तो उपयोग रहता ही है, क्यों, कमर में दर्द हो तो कमर पे रहता है, हाथ में दर्द हो तो हाथ पे रहता है, उपयोग तो वहीं रहता है ना। अब ऐसा करो तुम्हें कहां रखना है, नाक पे, तो इधर एक चोट मारो नाक में हथौड़ा, तो हथौड़ा नहीं ध्यान होते, समझ क्या कह रहा हूं, जब यहां बहन का दर्द होगा तो 24 घंटे यही रहेगा, अंतर पूछ रहे केवल ज्ञान हो जाएगा। आगे शरीर के किसी एक अंग पर ही तो रखने को कह रहे हो, दूसरे से हटाकर क्या उपलब्धि है, नहीं आता समझ में लोगों को। किसी भी तर्क का युक्ति का आगम का जवाब तो है नहीं, और उस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए कि गुरुदेव बन गए हैं, अब वो मिशन तो खत्म हो नहीं सकता है, क्यों, आत्मा के प्रदेश है। तो मैंने कल बताया था ना कि कहां और अन्य जो अपने निम्नांग हैं जिनका नाम लेने में शर्म आती है उनमें आत्मा के प्रदेश है या नहीं है, तो आत्मा के प्रदेशों का ध्यान करना है ना, तो इससे क्या लेना देना है, वे आत्मा के प्रदेश तो सर्वांग हैं, और वो मैंने कल बताया था ऐसे घूमते रहते हैं 24 घंटे, तो वो जो प्रदेश इधर नाक के हिस्से में है वो ही सब गंदे से गंदे हिस्सों में है, वो बदलते रहते हैं, ख्याल में है ना, 24 घंटे कुछ नहीं है उसमें। तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे नन्हे नन्हे बालक हैं जो यहां आए हैं, ये एक ही बीमारी के शिकार ना हो जाएं, तत्व ज्ञान को सीखने के लिए आए हैं ना, इसलिए हम थोड़ी बात कहते हैं, आप लोग मत घबराओ, आप लोगों से नहीं कहते हैं, आपको कहने से क्या फायदा है, क्या होगा है? हम और आप तो अब इस हालत में पहुंच गए हैं, क्यों पुरुषोत्तम जी, कि आज मेरे को कल तीसरा दिन होने वाला है, जो कुछ भी भला बुरा होगा वो उसमें आपसे तो सिर्फ आपका ही होगा, यदि इनके दिमाग में कीड़ा लग गया तो बहुतों को बिगाड़ सकते हैं ये, और अच्छा कीड़ा गया तो बहुतों को सुधार सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ कहते ही नहीं है, हम तो सब इनके लिए कहते हैं जो कुछ कहते हैं, मैं आपको तो मुफ्त में मिल जाता है ना। चलो कहां पढ़ रहे थे ना, तात्पर्य यह है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है, अतः एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों का आश्रय करने योग्य है, एकमात्र सिद्धे ध्येय और परम गेय, परम गेय मैं परम शुद्ध निश्चय नय का गेय निज भगवान आत्मा ही है, इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में कवि बनारसी दास जी इस प्रकार किया है। बोलो पढ़ो। जैसे कोई बाजीगर सोहटे बजाई ढोल, नाना रूप धर के भगल विद्या ठानी है। ये क्या कहते हैं? बाजीगर माने जादूगर, है ना। सोहटे माने चौराहे पर ढोल बजाकर, पहले के जमाने में अभी तो हॉलों में करने लग गए हैं वो, ढोल बजा बजा कर भीड़ इकट्ठी करते थे। क्या ढोल नाना और अनेक भेष बना बना करके जादूगर भेष बना के आता है और भगल विद्या ठानी में जादूगरी की विद्या को वो बताता है। ऐसे ही अनादि से मिथ्यात्व की तरंगनी सो भ्रम में थाई बहु काय निज मानी है। इस शरीर को हमने अनादि से माना, देखो एक ही बीमारी है, ख्याल नहीं ना। वो जादूगर का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वो कहते वो इतना साफ कहता है कि जो मैंने अभी ऊपर से बीच में वो आदमी लड़की को लिटा देता है, ऊपर से आरी चलाता है और लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं लड़की के, अरे आप ये माता बहन रोने लगती है, अरे हाय राम मेरे से देखा नहीं जाता है, है? पर बाद में वो उसी लड़की को एक मिनट में खड़ी करके दिखा देता है, देखो स्वागत है। मैंने जो मैंने दिखाया था वो सभी झूठ था, ये नजरबंदी का खेल था। बोलता कि नहीं बोलता है, मैंने तुम्हारी नजरबंद की थी और हम फटाफट सैकड़ों रुपया दे देते हैं, 100-100 रुपये का टिकट खरीद के जाते हैं। गजब हो गया, दो टुकड़े कर दिए लड़की की, लड़की मरी नहीं। अब वो कह रहा कुछ नहीं हुई लड़की को, कुछ खरोंच भी नहीं आई है, ये सब आपको धोखा दे रहा हूं मैं, ये भगल विद्या है। भगल विद्या ठानी है माने समझ गए आप, ऐसे ही खेल है। मिथ्यात्व के उदय में अनादि से जीव ने भगल विद्या ठानी है, यानी ये मेरा शरीर, मेरा स्त्री, मेरी बाल बच्चे मेरे, ऐसा सबको खूब दिखा दिया इसने, पर आज तक कोई किसी का हुआ ही नहीं, समझे ना। जैसे लड़की को मरी नहीं ना, ऐसे ही जिन जिन को मिथ्यात्व के जोर में हमने अपना अपना मान लिया, उनमें आज तक एक भी अपना हुआ नहीं है ना, है? देखो बिल्कुल अनुत्पादक श्रम है उसका, समझ रहा है मेरी क्या कह रहा हूं मैं, माने उसने क्या किया, ऐसा विश्व में नाम कमाया, सब जगह जाकर दुनिया को धोखा दे दे करके आ गया और विश्व में नाम हो गया, हिंदुस्तान का नाम हो गया, है? क्यों उससे कुछ दो गेहूं के दाना पैदा हुए? माने उत्पादक श्रम नहीं है, जो कुछ भी किया है उसने, उसमें उत्पादन तो कुछ किया ही नहीं, और जो सामग्री हमारे गांव की थी उनको कुछ बर्बाद अवश्य किया, वो लकड़ी वो कपड़े जो भी अब समझ में उसने काम में लिए ना, क्यों? और हजारों लोगों का समय है? वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि दो तीन तरह का श्रम होता है, जैसे कि किसान का श्रम है वो उत्पादक श्रम है, वो एक दाने के 100 दाने पैदा करता है, लेकिन उद्योगपति का श्रम है वो नया दाना तो पैदा ही नहीं करता है, कुछ दानों को बर्बाद जरूर करता है और उनको बदल देता है, लेकिन नया उससे देश की भूख मिटने वाली नहीं है। क्यों? यदि वो बिस्कुट बना के नहीं बेचता तो उसी गेहूं के लोग अपने घर में रोटी बना के खा लेते, भूखों नहीं मरते कोई उसकी वजह से, तो वो अनुत्पादक श्रम है व्यापारी का भी, लेकिन वो कहते उपयोगता है, आखिर वहां पहुंचाना तो है, खाने लायक तो उसे बनाना है और ग्राहक तक पहुंचाना है, तो इन्हें किसी तरीके से अर्थशास्त्र उपयोगता मान लेता है। लेकिन ये ऐसे काम जादूगर जैसे, ये एक एकदम अनुत्पादक फिल्म है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ के बहुत बड़े जवेरी का मेरे पास एक पत्र आया था 6 पेज का। वो अपने को बहुत बड़ा मानते थे, जरा उस वक्त पैसा वैसा निकाला था तो जरा यश भी बहुत हो रहा था, तो सब लोग तो उनके चक्कर काटते थे। मैं उनके पास कभी गया नहीं जिंदगी में, तो मेरे पास 6 पेज का पत्र आया कि आप बेकार के अनुत्पादक फिल्म में लग रहे हैं। क्या समझ आए ना, क्या है ये? आप प्रश्न करते क्या है इसमें, इसे क्या होने वाला है इसका? तो वो गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा, आटा मिलेगा, यानी व्यर्थ के काम में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लंबा लंबा 6 पेज का उपदेश लिखा था। फिर मैं कह रहा हूं कोई ऐसा करो, अस्पताल खोलो, कुछ मरीजों की सेवा करो, कुछ ऐसा करो वैसा करो, क्या लिखा था सब। मैंने उनको जवाब लिखा, मैं लिख के मैंने भेज दिया, तब बाद में पादनी जी को बताया। अरे आपने क्यों, क्या क्या दर, मुझे क्या लेना उनसे, क्या लेना देना उनसे है। मैंने लिखा आप बहुत बड़ी भूल में हैं, अभी आपको पता नहीं है। यदि ये बात समझना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सार्थक है कि निरर्थक है, तो शांति से सुनने की ताकत हो, 2-4 घंटा सुनने की सामर्थ हो, तो मेरे पास आना समय लेके, तो मैं आपको समझाने का विकल्प कर सकता हूं। और अन्यथा आप अपनी बातें हमारे, हमें समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, हैं? और प्रभव भी बिगाड़ रहे हैं। नरक मरक की बात तो मैंने नहीं लिखी क्या है, क्योंकि वे नरक मरक मानते ही नहीं होंगे। और फिर बाद में पार नहीं होता, ऐसा पत्र मैंने लिखा है उनको। फिर क्या होना था, काय को उनको आना था, काय को हमको समझाना था। वे अपनी मान्यता लेकर चले गए और अभी हम अपनी मान्यता लेकर के बैठे हैं क्या? तो ये भी तो अनुत्पादक श्रम है। मैंने बोला ना, अरे भाई जीव को सुख और शांति चाहिए, तो जो चीज सुख और शांति दे वास्तव में वो ही उत्पादन है। चाहिए क्या, वो गेहूं पैदा करे तो तुम्हारी भूख तो मिटेगी ना रहने की, क्यों? वो आकुलता मेटने का मार्ग है ना, तो ये तो आकुलता मेटने का मार्ग है। मैं कहा तुम जैनी हो, वो जैनियों के भगवान के नाम पर अस्पताल बनवाते हो, लेकिन वो महावीर ने क्या कहा उसे देखने की कभी तुम्हारे दिमाग में विकल्प खड़ा हुआ है? अरे वो 30 वर्ष तक केवल ज्ञान होने के बाद इसी प्रकार का अनुत्पादक श्रम करते रहे। यदि उनने अपनी जिंदगी बर्बाद करी तो उनकी हो गई तो हमारी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? हम तो उन्हीं की बातों को, जो काम उनने किया था वही काम कर रहे हैं क्या? फिर आपको महावीर के नाम पर कुछ करने का अधिकार नहीं है, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है कम से कम। नहीं तो नक्की कर लो कि महावीर ने क्या कहा था, बोलो। अजय भाई समझ में आई बात कह रही है? अरे मेरे को पहले दिखा तो लेते, लेकिन तुमको मैं जानता दिखा लेता तो पत्र जाते ही नहीं है, इसलिए डालने के बाद दिखा रहा हूं। बहुत दिन तक मेरे पास वो पड़ा रहा पत्र, आया हुआ हो गया हुआ भी, अब फिर न मालूम किस पोटरी में कहां चला गया होगा, मुझे पता नहीं है। कहीं 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 पड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन उसे खोजने के लिए किसी के पास समय नहीं है। देखो तैसे ही अनादि को मिथ्यात्व की तरंगनी सो भ्रम में धाई, भ्रम में जाकर के धाई है, दौड़ा, भ्रम में दौड़ रहा है। और बहु काय निज मान, सबसे बड़ी गलती क्या है, बहुत सी कायों को इसने अपना माना है ना, एकमात्र तो गलती है। अब ज्ञान कला जागी और भ्रम दृष्टि भागी, तो अपनी पराई सोझ पहचानी, हमारे ऊपर में कोई सोझ है ही नहीं। सोझ माने साजे का काम, ये क्या बोले, पार्टनरशिप, समझ माने पार्टनरशिप। जाके उदय परवान ऐसी भांति भई, निश्चय हमारी ज्योति सोई हम जानी है। कि भैया ये हुआ क्या है कमाल, कौन सा कमाल, कि हमने अपनी जाति और देह की जाति को पहचान लिया और दोनों जुदा जुदा हैं, ये कमाल कैसे हुआ रमेश? तो वो कहते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमने हमारी चीज, वो हमारी ज्योति ही थी, वो हमारा भगवान आत्मा ही था, वो हमारे ज्ञान में आया तो ये भी समझ में आ गया कि ये मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं, ये भी समझ में आ गया। इसके समझने के लिए फिर अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ता क्या है? अभी हर घर को अपना घर मान के घुस रहे थे और हमें पता चला कि हमारा घर ए है तो बाकी के घर हमारे नहीं है, ये समझने की जरूरत है, फिर वो तो अपने घर में चला गया है ना। जिस प्रकार कोई बाजीगर इंद्रजालिया जादूगर चौराहे पर ढोल बजाकर, उसे इंद्रजालिया भी कहते हैं जादूगर को, भगवान महावीर के बारे में जो छह उस वक्त अपने को तीर्थंकर मानने वाले लोग थे महावीर के जमाने में, छह लोग थे, मक्खली गोसाल ऐसे किस नाम है, बुद्ध का नाम भी है उसमें एक, और ऐसे छह थे। तो बाहर खड़े खड़े यही कहते थे, क्या गुजारे हो, वो तो इंद्रजालिया है, जादू के चक्कर में तुम्हें फंसा लेता है, क्योंकि ऐसी दिव्यधनी फिरती है, सबकी समझ में आ जाती है, ये ओम में फिरती है, अब ऐसे अच्छे थे ना जे, तो ये अच्छा में उलझा लेता है तुमको। और मारिच भी यही कहता था बाहर बैठा बैठा आदिनाथ के, क्या को जाते हो उसके पास, वो तो इंद्रजालिया है, इंद्रजालिया मैंने जादूगर बाजीगर, 16वीं शताब्दी का बाजीगर, आज का जादूगर और उस जमाने का इंद्रजालिया। ढोल बजाकर भीड़ इकट्ठी करके अनेक रूप धारण करके भगल विद्या का प्रयोग करता है, जादूगरी दिखाता है, ठग विद्या से लोगों को भ्रम में डाल देता है। उसी प्रकार मैं भी अनादि काल से मिथ्यात्व की तरंगों से भ्रम में भटककर आंदोलित होकर अनेक शरीरों को धारण करता हुआ उन्हें ही अपना मानता रहा, जिस शरीर में पहुंचा उसे ही अपना मानकर आज तक भटकता रहा हूं, किंतु अब मेरे चित्त में ज्ञान कला जाग गई है, भ्रम की दृष्टि भाग गई है, अपने और पराये की सच्ची पहचान हुई है। ऐसी दृष्टि होने से, ज्ञान कला जागृत होने से मैंने यह प्रमाणित कर लिया है कि जो मेरी चैतन्य ज्योति है, निश्चय से मैं तो वही हूँ, मैं तो निज चैतन्य ज्योति स्वरूप ही हूँ। अब इसमें जो पुरानी पद्धति है ना अर्थ करने की, कि एक एक शब्द का अर्थ लिखा है, बाजीगर माने जे फलाना चौहटे माने, तो वो लिख तो सकते हैं, लेकिन जो ऐसा पढ़ने से पूरा भाव ख्याल में आ जाता है, हैं? वो उसमें नहीं आता, टूट टूट के पढ़ने में क्या क्या हो रहा है, तो पूरा वो वाक्य वो उससे कहें कि तुम अच्छा ठीक है वो पढ़ लिया ना, इसका नाटक समय सार का भी छपा ना अपने यहां से, तो उसमें अर्थ भी लिखी है, टिप्पणी भी लिखी है, अब उसे पढ़ के ऐसा अर्थ लिख के बताना, एक तरह का ट्रेनिंग ये भी दो, प्रतियोगिता भी रखो इसकी, क्या कि हम आपको एक छंद देंगे यहां पर पेपर में लिखा होगा, अब उसका अर्थ बिल्कुल खड़ी बोली में सीधा आद्योपान, अधिकतम में कुछ छूटे नहीं और सीधा सबके ख्याल में आ जाए, ना समझ से ना समझ के नहीं, ऐसा अर्थ लिख के बताओ। ए माने ए, ए माने ए, ए माने ए, तो वाक्य पूरे ही नहीं होता कहीं, वो वाक्य कहीं से शुरू हो, उसमें कर्ता कर्म क्रिया का बैलेंस हो, मैंने वाक्य का गठन तो सही हो। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आप लोग भी जब प्रयोग करके देखना, एमए की या पीएचडी की डिग्रियां ले लेते हैं तो एक पैरा सही नहीं लिख सकते, कैसा है ना, बड़े बड़े मैंने सामान्य जनों से लेकर के पीएचडी धारी तक के लिए बता कह रहा हूं मैं आपको। एक पैदे का गठन सही नहीं होता, अब 43वीं गाथा चलते हैं। विगत गाथाओं में और कलशों में यह बात जोर देकर कहते आ रहे हैं कि समय सार स्वरूप शुद्धात्मा पक्षाति क्रांत है, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि पक्षाति क्रांत का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब इतने छंद लिख दिए, उनको सब लिखिए, अब एक गाथा में फिर बता रहे पक्षाति क्रांत का मतलब क्या है। यही कारण है कि हम इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमरचंद लिखते हैं कि पक्षाति क्रांतस्य किम स्वरूपम इति चेत, ये अपने न्याय की व्यवस्थित भाषा है कि पक्षाति क्रांत का क्या स्वरूप है यदि कोई ऐसा पूछे तो। इति चेत का अर्थ है यदि कोई ऐसा कहे तो, बस आंख मीच के न्याय शब्द के तथा ही ननु इति चेत तदप्य संगत, एक कुछ पेटेंट है, कम से कम उन शब्दों का अर्थ तो हमें अच्छी तरह से आना ही चाहिए है? यदि कोई ऐसा कहे तो, माने वो प्रश्न का आप प्रश्न उन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया और कोई नहीं है, वैसे वो कह रहे उनके ही दिमाग में उन्होंने ही खड़ा किया है, और यदि कोई ऐसा कहे तो उसके बारे में मेरा कथन नहीं है बस ये फिर वो लिखेंगे। कोई ऐसा पूछे कि पक्षांति काय का स्वरूप क्या है तो उसके उत्तर में ये गाथा कही जाती है ना। दो नबी नयाण भनिदम जो शांति जी आज पढ़ा रहे थे ना, तो बता रहे थे आपको कि भाई इसमें शादवाद नहीं लगेगा है ना, क्या कि स्वभाव से तो अग्नि गर्म ही है, अब ये कहेंगे कथनचित गर्म है कथनचित ठंडी है तो ये नहीं लगेगा, ऐसा बता रहे थे। बहुत अच्छी तरह से समझाया था, मैं ये बता रहा गुरुदेव जी के सामने ये समस्या बहुत आती थी कि साहब बताओ इसमें लगा के बताओ, तो गुरुदेव श्री उसका क्या जवाब देते थे वो बताना मुझे, ये उनका जवाब गलत है कि सही ऐसा नहीं क्या, वो सही है एकदम, लेकिन वो क्या देते थे वो बता रहा हूं। तो वो ये कहते थे, ऐसा नहीं कहते थे इसमें ये नहीं लगेगा, वो ये कहते थे इसमें अस्थि नास्ति से लगेगा, अब पढ़ लेना उनके सब प्रवचनों में सुन लेना। वो क्या कहते कि मैं आप क्या कौन सा वाक्य बोल रहे थे बन, अग्नि गर्म ही है तो कहें स्वा की अपेक्षा गर्म ही है, स्व माने स्व, वो प्रभाव की अपेक्षा गर्म नहीं है, ये लग गया वो कहते हैं, तो नास्ती लग गई ना कि गर्म है कि गर्म नहीं है, तो है भी लग गई और ना भी लग गई कि नहीं है, कि क्या नहीं है कि पर की अपेक्षा गर्म नहीं है, माने पर गर्म नहीं है कदम। वो कहते थे कि यहां ऐसा लगाना तो ये अस्थि नास्ति ऐसी लगाना है। अब मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है, अपना अस धातु है ना और भू धातु है, तो अस का बनता अस्थि और भू का बनता भवति, हिंदी में क्या हुआ अस्थि माने है और भू माने होता है, ठीक है। अब ये आपके व्याकरण में लिखा होगा कि अस धातु जो है एक वर्ब नहीं है, एक क्रिया नहीं है, एक सहायक क्रिया है, एक होती है क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया, ये पढ़ा हिंदी में भी आता होगा, सुना तो होगा कि नहीं सुना होगा। तो भवति होता है एक क्रिया है, करता है एक क्रिया है, खाता है एक क्रिया है, और हे ये सहायक क्रिया है, माने ये दूसरे की सहायता करती है। क्या है कि जीव है, जीव करता है, अब समझे, वो हरेक में हे लगा है। तो वास्तव में जो भू भू में भी है लगा है भवति, तो क्री धातु में भी है लगा है और अकेला भी है होता है। अब ये उंगलियां पांच होती हैं कि पांच हैं, क्यों ये पांच हैं कि पांच होती हैं, समझ गया ना। तो ये पांच के तो इसमें सहायक क्रिया से काम चलता है, इसमें वो मूल क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अस्तित्व को बताती हैं, क्या होता है नहीं बताती हैं, समझ में ना। तो कहते हर क्रिया में सहायक क्रिया तो लगी हुई होती ही है, इसलिए आपको ये समस्या कभी आए नहीं। अस्ति और नास्ति का बोल लगाओगे, घटित करोगे ना, तो कहीं ऐसी समस्या खड़ी नहीं होगी कि आप जब स्वभाव की अस्था है स्वरूपे ने, है ना, सदैव सर्वम को निश्चित स्वरूपे ने स्वरूप आदि चतुष्टयात और प्ररूप की अपेक्षा से ना कौन इंकार करेगा, तो ऐसा घटित करते थे वो है? अच्छा तो है कि नहीं है, कि प्रमाण से हाँ है भी और नहीं भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहेंगे स्वरूप की अपेक्षा है और प्ररूप की अपेक्षा नहीं, करता है कि नहीं करता है, तो कहेंगे स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा नहीं करता है, प्ररूप की अपेक्षा, मतलब अब समझना वो लगा देंगे। तो एक उसमें इसकी एक विधि, माने वो भी एकदम वैसी नहीं है, लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इतना तो कोई नए चक्र वो पढ़े नहीं थे, न्याय शास्त्र पढ़े नहीं थे, लोग लगाते थे, आप इसमें एकांत कर रहे हो, आप इसमें एकांत कर रहे हो, कहीं कहते एकांत कर रहे हो, हम लगा रहे ना, मैं हूं और मैं तुम नहीं हूं। अब सुनना बहुत मार में, इसमें तुम नहीं, तुमसे क्या लेना देना है कि तुमसे कुछ नहीं है, सुनो जरा समझना। लेकिन मेरे में दो धर्म है, एक का नाम है अस्ति धर्म और एक का नाम है नास्ति धर्म। तो तुम मैं नहीं हूं, ये नहीं नास्ति नामक धर्म मुझ में है, इसकी अस्ति है, आप समझ गए ना, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो अस्ति का काम क्या है कि वो अपने को टिकाए रखता है, इनने बोल दिया ऐसा टिकाए रखता है, और फिर नास्ति का काम क्या है कि पर को अपने में नहीं घुसने देता है, तो वो भी तो एक सुरक्षा है ना, नहीं अपन टिकेंगे कैसे, पाकिस्तान घुस जाएगा, चाइना घुस जाएगा, तो वो अपने भारत रहा क्या है? तो वो नास्तित्व नाम का धर्म ये भगवान आत्मा में वैसा ही है जैसा अस्तित्व नाम का धर्म है, माने उसकी भी अस्ति है, है? तो समन भद्र ने लिखा है भवत्यभावो पिये वस्तु धर्मा, है ना, ये कार का पढ़ाई आती है तुम्हारे में, आती कि नहीं आती, भवति अभावो पि वस्तु धर्म, अभाव भी वस्तु का धर्म है, ये लिखा। फिर कैसे तो भावांतराभाव, भावांतर के अभाव रूप, ऐसा है इस लोग, मेरे ख्याल से आत्मनिशा की आत्मनिशा में ही होना चाहिए, है? है? उसके बाद आई होगी ना, आती है ना, उसमें आया है ना, भवत्यभावो पिये वस्तु धर्मा, लेकिन भावांतर स्वभाव अभाव होता है जैन धर्म में, तुच्छाभाव नहीं होता है, अन्य मतों में तुच्छाभाव मानते, तुच्छाभाव माने वास्तव में कुछ नहीं है, पर यहां तो हम कहते क्या नहीं है कि तुम मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं है क्या, हम तुम नहीं हो, तुम हम नहीं हो, तुम हो, तुम हम है, ऐसा हमारे यहां भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है, न्याय शास्त्र की बात है। देखो गाथा में तो यह स्पष्ट है ही कि नए पक्ष से रहित ज्ञानी जीव दोनों नए कथनों को जानते तो हैं, परंतु मात्र जानते ही हैं, नए पक्ष को रंच मात्र भी ग्रहण नहीं करते। देखो दोनों भी नयान भनिदम जानदि, अब के नहीं जानते, नहीं जानते व्यवहार, नहीं को जानो ही मत, जानो ही मत, क्या जानते हैं लिखा ना, ज्ञानी ज्ञानी जानते तो हैं, पर एक भी नए के पक्ष में नहीं जाते। ये तो निश्चय के पक्ष में भी नहीं जाते, व्यवहार नए के पक्ष में भी जाते, दोनों पक्षों को जान लेते हैं, है ना। साथ ही वे समय से प्रतिबद्ध, विशेषण का प्रयोग होने से यह भी संकेत मिलता है कि यह बात आत्मानुभवी ज्ञानी जीवों की ही है, क्योंकि आत्मा से प्रतिबद्ध तो भाई प्रतिबद्ध माने अपने, हमारी प्रतिबद्धता तो भाई इससे है, हम तो भगवान महावीर के प्रति जिम्मेवार हैं, इसी बोलते प्रतिबद्धता माने जिम्मेवारी। क्यों कैसा बाबू को जिम्मेवारी से बोलना चाहिए, हम लोग जिम्मेवारी से बोलते हैं, तो फिर क्या है? आपने आपने तो ऐसी बात कैसे कह दी कि भगवान महावीर के प्रति जिम्मेवार हैं, हम तुम्हारे प्रति जिम्मेवार नहीं है। क्यों कि अज्ञानी के तो हमारे हर बात विरुद्ध है, यदि सामने वाला जी अज्ञानी है तो उसकी तो मान्यता के विरुद्ध हमारी हर बात ही निकलने वाली है, तो हमारी प्रतिबद्धता सामने वाले से कैसे हो सकती है, हमारी प्रतिबद्धता तो भगवान महावीर से है, है ना। रेलवे में टिकट बेचने वाला बैठा है तो उसकी प्रतिबद्धता रेलवे डिपार्टमेंट से है कि टिकट लेने वाले से है, किसान उधार दे दो कल पैसा मैं दे जाऊंगा, लिख लो कि बनिए की दुकान थोड़ी है, जनता का ध्यान तो रखना चाहिए। अरे कभी किसी के पास हमको तुम बेईमान समझते हो, कि हम तो तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, ना बेईमान ना ईमानदार, क्यों? तात्पर्य यह है कि किसी भी नए के विषय को जानने का निषेध नहीं है, परंतु नए पक्ष में पढ़ने का निषेध अवश्य है। कितना क्लियर है सर ये देखो, वितराग विज्ञान में तो बहुत पहले आई होगी, लेकिन ये सबसे पहले 2 मई 1996 में छपा था ये भाग, तो 96 के तक पुरानी तो बात है ही है ना, 25 साल तो हो ही गया ना, है? इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब ये आ गया वो मैंने कहा था शुद्ध ज्ञान का और केवली का, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण शुद्ध ज्ञान के अव्यभूत विवाह निश्चय नए पक्षों को स्वरूप को मात्र जानते ही है, परंतु सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं विज्ञानहीन स्वभावी होने से शुद्ध ज्ञान की भूमिका का अतिक्रांतता के द्वारा अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार चुकने के हो चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी। क्या कह रही, अब शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं और केवल ज्ञान में नए नहीं होते हैं, तो जैसे केवल ज्ञान नए पक्षातीत है, केवल ज्ञानी नए पक्षातीत हैं, कहते शुद्ध ज्ञानी 24 घंटा नयों का प्रयोग करते हुए भी वो केवली भगवान के समान ही नए से पक्षातीत है। वो कहते नए का विकल्प जब टूट जाएगा आत्मा के अनुभव में, उस काल मानो तुम, क्यों तो उस काल होगा तो बाकी के काल फिर अज्ञानी भी मानो, क्यों? लेकिन बाकी काल से अज्ञानी नहीं मानते है ना, उसे सम्यक शुद्ध ज्ञान है, सम्यक शुद्ध ज्ञान है तो वो बात भी कायम है, है? कौन सी बात? पक्षातिक्रांत होने की। 2 वर्ष किए थे ना पक्षातिक्रांत के फलोरम, कौन कौन से किए थे? एक तो अनुभूति के काल में सिद्धोपयोग के काल में वो पक्षातिक्रांत हो गया, नए के विकल्प टूट गए, और दूसरे इस वक्त नए के विकल्प कर रहा है सम्यक ज्ञान की भूमिका में है, दोनों का वास्तविक स्वरूप करता है, तो भी वो नए के पक्षाती क्रांत है। टूरिज्म जी ने बहुत अच्छा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसके बारे में कि भैया हमको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो एक आदमी दो दो चार कह रहा है और एक आदमी दो दो पांच कह रहा है, तो हमको दोनों को बराबर मानेंगे तब निष्पक्ष कहलाएगा। निष्पक्षता का अर्थ कहां से लाए? हम तो बिल्कुल बीतरागी भाव से ये जान लें कि ये गलत कह रहा है और ये सही कह रहा है और यही कहें तो भी हम निष्पक्ष ही हैं कि तुम पक्ष तो ले रहे हो। क्लियर, एक का हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम तो वस्तु के स्वरूप का उसका पक्ष ले रहे हैं। फिर ऐसा कहते ना जो अपने को विद्वान मानते हैं, ऐसा कहता अहम हो गया, मैं अभिमानी हूं। तो मैंने धर्म के रक्षक में लिखा है कि केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानते होंगे या नहीं मानते होंगे? क्यों? और केवल ज्ञानी माने तो अभिमानी हो जाएगा। तो शुद्ध ज्ञानी अपने को शुद्ध ज्ञानी माने कि नहीं माने? सम्मानृषि अपने को सम्मानृषि माने कि नहीं माने? मुनिराज अपने को मुनिराज माने कि नहीं माने? और मुनिराज कहें कि नहीं कहें? हमको एक मिनट में अभिमान की गंदा नहीं लगती है। ये लिख दिया पद्म पद्मधारी देव ने कि मेरे मुख से परमागम का मकरंद झरता है। और क्या रो रहा है बार बार? केवली भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है। क्या को रोता है? अरे केवली भगवान के समोषण में जाता तो वहां तुझे क्या मिल जाता? वहां भी उनके पुद्गल के परमाणु देखने को, दर्शन को मिलते और पौद्गलिक भाषा दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती। भगवान आत्मा के दर्शन वहां नहीं होने वाले थे। और यहां भी पुद्गल के भगवान तो बैठे ही हैं, ऊपर खड़े हैं, नीचे बैठे ऊपर खड़े हैं। क्या को रो रहा है? और दिव्य ध्वनि तो नहीं मिल रही है कि हम सुना रहे ना? कैसे भाई बड़ी अभिमान की बात करते हैं। अरे भाई हम जब उनकी उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं और एक अक्षर भी जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते हैं और नहीं बोलते हैं, तो एक कहने में अभिमान कहां से आ गया? आपने किसी कंपनी का वो लिया है क्या बोलते ना, बेचने के लिए लेते ना, सब सब भी नहीं आते मेरे को दुनियादारी के लीडर्स क्या बोलते हैं, एजेंसी ले ली आपने, तो आप नहीं कहते हैं कि उसी कंपनी का गारंटी से वो ही माल है बिल्कुल पक्का, तो आप इसमें अभिमानी होते हैं? वो ही हम वो ही कहें भाई साहब, हमने थोड़ी बनाई, हमारे घर में फैक्ट्री लग रही है, वहां से सीलबंद आया है तो हम नहीं कहें क्या? मानो हमारे मन में हर बात में पक्षपात, हर बात में पक्षपात, ऐसा ऐसा फीलिंग होने लग गई, हमें हम ही गिल्टी कॉन्शियस में आ जाते हैं। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे पे पक्षपात का आरोप लगेगा क्या? लेकिन मैं यदि सम्यक निर्णय करूं तो इस आरोप लगाने वालों की मैं परवाह क्यों करूं? बहुत से लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं दुनिया में, हमसे कम कहते हैं, लोगों से ज्यादा कहते हैं कि आपने हमारे को ज्यादा नंबर इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप हमें देते तो लोगों आप पे अपक्षपात का आरोप लगता, तो अपक्षपात का आरोप ना लगे इसके लिए आपने हमें कम नंबर दिए हैं। मैंने कहा वो उनने तो नहीं लगाया, लेकिन तू तो लगा ही रहा है ना, क्यों पक्षपात का आरोप क्या है? किसी के पक्ष में कहना ही नहीं है, किसी के विपक्ष में कुछ कहना वो भी तो पक्षपात है ना, तो तेरे विपक्ष में काम किया ना अपने को निष्पक्ष बनाने के लिए, तो वो कभी आरोप लगाता क्या चाहे नहीं लगाता, लेकिन तू तो मेरे पर आरोप लगा ही रहा है सामने ही मेरे मुंह पे, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं निष्पक्ष निर्णय कर सकूं। आप फिर क्या है, मैं क्यों लगाने वाले तो तब भी लगाएंगे, लेकिन मैंने यदि ऐसा नहीं कुछ किया है तो हम किसकी परवाह करें? वो अब लिखे वो कहे भगवान की वाणी में जो आया है, हम पूरी सावधानी है, टोटो मंजी ने लिखा मैं पूरी सावधानी रखूंगा, एक शब्द भी गड़बड़ नहीं हो इसकी, फिर भी हो जाए तो तुम फिर ध्यान रख लेना, लेकिन मैं बिल्कुल वही बात कहूंगा। तो ऐसे बार अपना कॉन्फिडेंस बोले तो इसमें कहां दिक्कत है, अभिमान ही हो जाएगा वो। ये अभिमान नहीं है कि स्वामी स्वाभिमान नहीं है, अभी परम सत्य का उद्घाटन है भाई साहब। तो कोई सम्य दृष्टि हो और हम उससे पूछें, क्यों भाई साहब आप सम्य दृष्टि हैं कि नहीं, क्या कह रहे? नहीं नहीं भैया हमको समझ रहे हम तो मित्र जी, ऐसा कह देवे तो विनयवान कहलाएगा। क्यों तो फिर क्या कहे, ऐसा कह देवे कि हाँ हम ज्ञानी हैं, फिर चीत खाएंगे चारों तरफ वाले। क्या कह रहे, सबसे ज्यादा तकलीफ तो ज्ञानियों को है, न सत्य बोल सकते हैं ना झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं भाई साहब नहीं बोलने का अभी तो एक रास्ता है ना, काय को परेशान हो रहा है, क्यों एक रास्ता और है ना वो नहीं बोलने का। हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य हैं, हम देश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि लोकसभा में प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब हमें देना जरूरी है। तुम हमसे कोई बात पूछते हो तो हमारी मर्जी जवाब दें नहीं दें, हम कोई बंधे थोड़ी है तुम्हारे, हमें क्या लेना देना है तुमसे, जाओ अपने घर। इन्हें क्या दें साहब, हम क्या करें साहब, लोग तो ऐसा पूछते, पूछ दो ना लोगों को, क्या करना है तुमको, तुम अपनी बात बोलो ना। लोग ये कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, सुनो क्या करना, क्या जवाब है, क्या जवाब देने की जरूरत है। लोग तो यही कहेंगे तुम्हें मनुष्यगति में नहीं होना चाहिए था, क्या करोगे, क्या जवाब दोगे, हर प्रश्न का जवाब देने की तुम्हें गारंटी है, तो क्या करना चाहिए। वो अकबीरबल ने जो अकबर को बताया था ना, वैसा करना चाहिए कि मूर्ख के सामने चुप रहना चाहिए, यानी ऐसे प्रश्न मूर्ख लोग ही करते हैं, समझदार लोग नहीं करते।